यूनानी रोमन इतिहास की अवधारणा। प्राचीन संस्कृतियों में यह अवधारणा पाई जाती है कि मानव इतिहास एक पूर्वांकित योजना के अनुसार अग्रसर होता जा रहा है। इसका लक्ष्य निश्चित है। लक्ष्य प्राप्ति तक विकास प्रक्रिया में आने वाली अवस्थाएं भी पूर्वांकित हैं। इस अवधारणा से स्पष्टतः मानव इतिहास के विगत, अतीत तथा अनागत भविष्य के विषय में एक परिकल्पनात्मक चित्र के निर्माण में अधिकांश लोगों की रुचि दिखाई देती है। इस प्रकार की अवधारणा के दो प्रमुख तत्व हैं। एक, मानव समाज निरंतर पतन का इतिहास है। मानव समाज अधिकाधिक दुख तथा नैराश्य की ओर बढ़ रहा है। अंत में इसका विनष्ट होना प्रायः निश्चित है। दो, मानव इतिहास अकुशल से कुशल की ओर प्रवर्तमान है। सही अर्थ में यह विकासशील है। यह निरंतर अत्यधिक न्याय, सुविधा तथा सुख की ओर बढ़ रहा है। यूनानी रोमन इतिहास अवधारणा में हेसियट का युग चक्र सिद्धांत सर्वथा महत्वपूर्ण है। उसने चार युगों की कल्पना की है और नामकरण चार धातुओं के नाम पर रखा है। एक, स्वर्ण युग। इस युग में क्रोनोस का स्वर्ग में शासन था। मनुष्य स्वयं देवताओं के साथ कार्य करता था। पृथ्वी स्वतः उन्हें सभी श्रेयस्कर वस्तुएं प्रदान करती थी। दो, रजत युग। युग चक्र इतिहास का यह दूसरा चरण है। पूर्ववर्ती युग की अपेक्षा मनुष्य हीनतर अवस्था में पहुंच गया। धीरे धीरे वह विनाश की ओर अग्रसर होता जा रहा है। पारस्परिक संघर्ष में व्यस्त रहने के कारण देवताओं की आराधना के प्रति उदासीन होने लगा। तीन, कांस्य युग। युग चक्रवादी अवधारणा का यह तृतीय चरण है। मानवीय गुणों के उत्तरोत्तर ह्रास इस युग की विशेषता है। मनुष्य शक्तिशाली था परंतु भाव से सर्वथा, पृष्ठ संख्या 58, शून्य था। उसका भवन तथा अस्त्र शस्त्र कांस्य निर्मित होते थे। पारस्परिक मारकाट, कलह तथा संघर्ष इस युग की विशेषता रही। चार, लौह युग। इस युग चक्र सिद्धांत का अंतिम चरण है। लौह युग, यह युग चक्र सिद्धांत का अंतिम चरण है। इस युग के वीर पुरुष अपने पूर्वजों की तुलना में अधिक वीर और न्याय प्रिय थे। इस युग में ट्राय तथा थेविस के युद्धों में वीर पुरुषों ने भाग लिया। वर्तमान कालिक लौह पुरुष लौह युग में श्रम तथा दुख से मानव समाज मुक्त नहीं है। युगों के चक्रात्मक विकास का यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि जैसे रात दिन चंद्रमा का वर्धमान तथा क्षयमान पक्ष अथवा एक ऋतु के पश्चात दूसरे का अनुगमन होता रहता है, इसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में भी परिवर्तन की चक्रात्मक प्रक्रिया चलती रहती है। कॉलिंगवुड ने हेसियट की युग चक्रवादी अवधारणा की कटु आलोचना की है और इसे ऐतिहासिक अवधारणा की संज्ञा दी है। धार्मिक विचारों पर आधारित कथाएं ऐतिहासिक नहीं अपितु काल्पनिक हैं। यूनानी अवधारणा के अनुसार इतिहास मात्र धर्म पर आधारित कथा नहीं अपितु एक शोध है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना है। इस अवधारणा का स्वरूप धार्मिक नहीं बल्कि मानवतावादी है, क्योंकि इतिहास का संबंध मानवीय क्रियाओं से है। हेरोडोटस की इतिहास अवधारणा मानववादी थी। कॉलिंगवुड ने लिखा है, उनके इतिहास लेखन का एकमात्र उद्देश्य भावी पीढ़ी के लिए अतीत के मानवीय कार्यों को सुरक्षित रखना था। मानवीय कार्य व्यापार भाग्य द्वारा नियंत्रित होते हैं। देवतागण भी भाग्य के नियंत्रण से नहीं बच सकते। हेरोडोटस ने स्वीकार किया है कि इतिहास की गति ईश्वरीय इच्छा द्वारा नियंत्रित होती है। इतिहास में व्यक्तिगत कार्य का विशेष महत्व है। एक व्यक्ति के कार्य के परिणाम स्वरूप संपूर्ण मानव समाज सुख तथा दुख भोगता है। इसके अतिरिक्त हेरोडोटस ने प्राकृतिक नियमों को इतिहास में प्रधानता दी है। उसने इतिहास में मानवीय कार्यों को स्वीकार किया है। मानवीय कार्यों पर प्रकृति, भौगोलिक परिस्थिति तथा वातावरण का प्रभाव स्वाभाविक है। इतिहास जनक के रूप में उसने सर्वप्रथम इतिहास के वैज्ञानिक स्वरूप का प्रतिपादन किया है। कॉलिंग पृष्ठ संख्या 59। कॉलिंगवुड के अनुसार हेरोडोटस इतिहास के जन्मदाता हो सकते हैं, परंतु मनोवैज्ञानिक इतिहास के जनक थ्यूसिडिडीज हैं। यूनानी इतिहास की अवधारणा में थ्यूसिडिडीज हेरोडोटस का उत्तराधिकारी नहीं कहा जा सकता है। हेरोडोटस की रुचि घटनाओं में रही है। थ्यूसिडिडीज ने उनके माध्यम से कुछ स्पष्ट नियमों का प्रतिपादन किया है। इन नियमों का स्वरूप शाश्वत है और मानव के लिए बोधगम्य है। थ्यूसिडिडीज ने अधिक आशावादिता को पतन का कारण स्वीकार किया है। भाग्य की अपेक्षा इतिहास की गति को परिवर्तित करने में मानव इच्छा की प्रबलता के द्वारा इस विचार की अभिव्यक्ति कराई गई है। इन्होंने इतिहास में नियतिवाद तथा अवश्यंभाविता के सिद्धांत को अस्वीकार किया है। थ्यूसिडिडीज ने कहा है कि घटना अवश्यंभाविता नहीं होती है, घटना अवश्यंभावित नहीं होती है। यदि मनुष्य को अवश्यंभाविता का ज्ञान होता तो भावी घटना से अपनी रक्षा का उपाय करता। थ्यूसिडिडीज के अनुसार इतिहास के विभिन्नता का प्रमुख कारण मानवीय मस्तिष्क होता है। युग चक्रवादी प्रभाव के कारण उसने उत्थान तथा पतन को इतिहास की गति स्वीकार किया है। इतिहास की अभिव्यक्ति सभ्यता एवं संस्कृति के विकास की प्रक्रिया में होती है। उसने प्लेटो के सत्यम शिवम सुंदरम को इतिहास का चरम लक्ष्य स्वीकार किया है। रोमन इतिहासकार पोलिवियस ने इतिहास अवधारणा के सार्वभौमिक स्वरूप को स्वीकार किया है। अतीत का वर्तमान में सातत्य ही इतिहास है। रोमन साम्राज्य के उत्थान के माध्यम से उसने संपूर्ण विश्व को एक शासक के नियंत्रण में लाने का स्वप्न देखा था। विश्व साम्राज्य की कल्पना सबसे पहले पोलिवियस ने की थी। इसे उसने भाग्य का परिणाम नहीं बल्कि मानवीय इच्छा के परिणाम के रूप में देखा था। उसने भी इतिहास के चक्रवादी स्वरूप को मान्यता प्रदान की है। प्राकृतिक नियमों के अनुसार उत्थान विकास पतन तथा अंत का क्रम इतिहास की गति को प्रभावित करता है। पोलिवियस ने अतीत के अध्ययन को चरित्र सुधार के लिए आवश्यक तथा उपयुक्त बताया है। उसने मानवीय दुख सुख को भाग्य के प्रभाव की अपेक्षा काल तथा परिस्थितियों के परिणाम को मान्यता दी है। ऐतिहासिक घटनाएं मानवीय चरित्र तथा इच्छाओं के अनुसार होती हैं। कार्य कारण के संबंध में उसकी अवधारणा है कि प्रत्येक घटना के कुछ संभावित अथवा असंभावित कारण होते हैं। रोमन साम्राज्य के पतन का कारण रोमवासियों का विलासप्रिय जीवन था। लीवी की इतिहास अवधारणा में नैतिकता की प्रधानता है। इतिहास का उद्देश्य नैतिक शिक्षा प्रदान करना है। उसने समीप के अतीत की अपेक्षा सुदूर अतीत के अध्ययन पृष्ठ संख्या 60 को आवश्यक बताया, क्योंकि सुदूर अतीत में नैतिकता तथा भ्रष्टाचार के उदाहरण मिलते हैं। उसका दृष्टिकोण मानववादी था। कॉलिंगवुड के अनुसार टेसिटस रोमन के पतन काल का प्रतिनिधित्व करता है। उसकी रचना तथा विचार पर इस पतन का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। अच्छे तथा बुरे तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के संघर्ष को प्रस्तुत करना ही उसके इतिहास लेखन का तात्पर्य था। टेसिटस का चरित्र चित्रण ऐतिहासिक यथार्थता के विपरीत है। कॉलिंगवुड के अनुसार उसका इतिहास रोमन ऐतिहासिक अवधारणा का मरुस्थल है। टेसिटस के अनुसार नैतिक क्रांतियां भी सामाजिक तथा राजनैतिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप होती हैं। परिवर्तनशील प्रकृति की ऋतु परिवर्तन का एक ऐतिहासिक घटनाएँ होती हैं। धार्मिक अवधारणा इतिहास लेखन पर धर्म का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। परिणामस्वरूप इतिहास की धार्मिक अवधारणा इसका फल है। पारसी अवधारणा प्राचीन पारसियों के धर्म को पारसी धर्म कहते हैं। आज पारसिया में इस धर्म का कोई अवशेष नहीं है, क्योंकि इसके धर्मावलंबी हजारों वर्ष पूर्व भारत में बस गए। इस धर्म की समानता वैदिक कालीन धर्म से है। इसके प्रवर्तक जरथुस्त्र थे। उनके अनुसार इतिहास का तात्पर्य सत तथा असत के बीच निरंतर संघर्ष है। अंत में सत की विजय इतिहास का चरम लक्ष्य है। यही सामाजिक आवश्यकता है। गोचर तथा अगोचर सृष्टि परम सत्ता की कृति है और उसी के द्वारा नियंत्रित है। मानव इतिहास धर्म के परिवेश में विकसित होता है। डॉक्टर ढल्ला के अनुसार सार्वभौमिक दृष्टिकोण तथा सहयोग धर्म के लिए आवश्यक है। ज्ञान की कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं है। यह धर्म जाति के विभेद को स्वीकार नहीं करता। विश्व के सभ्य तथा सुसंस्कृत स्त्री पुरुष बौद्धिक विश्ववाद को स्वीकार करते हैं। सार्वभौमिक शिक्षा विश्व भ्रातृत्ववाद के विकास में सर्वाधिक सहायक है। धर्म द्वारा प्रेरित विश्व निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसरित होता रहेगा, यही इतिहास की अवधारणा है। यहूदी अवधारणा। यहूदी अवधारणा के अनुसार इतिहास अतीत की घटनाओं का प्रस्तुतिकरण मात्र नहीं है, इतिहास ईश्वरीय इच्छा को अभिव्यक्त की अभिव्यक्ति है, क्योंकि वही सृष्टि का कर्ता है। यहूदी अपने को ईश्वर का सर्वाधिक प्रिय जन मानते हैं। उनका दृष्टिकोण वैयक्तिक होते हुए भी सार्वभौमिक है। उनकी अवधारणा के अनुसार पहले संपूर्ण इजरायली यहूदी, उसके पश्चात संपूर्ण मानव जाति का कल्याण इतिहास का परम लक्ष्य है। शासक पृष्ठ संख्या 61। ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में मानव कल्याण के लिए कार्य करता है। क्लाउड मेंटेफियोर के अनुसार मानव इतिहास की पृष्ठभूमि उद्देश्य परक है। यहूदियों का कार्य धनार्जन तथा साम्राज्य विस्तार मात्र नहीं, अपितु मानव कल्याण के लिए ज्ञान प्राप्त करना है। उनके अनुसार सार्वभौमिक प्रगति ही इतिहास का चरम लक्ष्य है। इस्लामी अवधारणा। इस्लाम विश्व का एक विशिष्ट धर्म है। अल्लाह ही सृष्टि का कर्ता है। इतिहास में ईश्वरीय दृष्टि से बचकर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। आकाश के नक्षत्र गण जिस प्रकार पूर्व नियोजित व्यवस्था में परिभ्रमण करते हैं, उस प्रकार न्याय संयुक्त व्यवस्था मनुष्य को उपलब्ध नहीं है, किंतु मनुष्य को सामाजिक संगठन को बचाने के लिए कार्य करना पड़ता है। मनुष्य सृष्टि की विशिष्टतम कृति है। इस्लामी अवधारणा के अनुसार इतिहास प्रकाश की ज्योति तथा अंधकार की गहनता के बीच निरंतर संघर्ष है। यह प्रकाश और अंधकार का संघर्ष स्वर्ग और नरक, पुण्य और पाप, फरिश्ता और शैतान के द्वंद्व का प्रतीक है। अल्लाह अपनी इच्छा से मनुष्य की सृष्टि करता है और मनुष्य का कर्तव्य उसके प्रति आत्मसमर्पण करना है। इस्लामी समाज विश्वासी मनुष्यों का समूह है। इसमें अतीत के मृत मुसलमान तथा इस्लाम से पहले के पुण्यवान पुरुष भी आते हैं। ईश्वरीय वाणी अथवा कलमा शाश्वत, अमर तथा अपरिवर्तनीय है। मोहम्मद साहब को साक्षात्कार के क्षणों में ईश्वरीय सत्ता का आभास हुआ। उससे पूरे इतिहास का क्रम चमक उठा। काल का प्रारंभ, स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण, स्त्री पुरुष की सृष्टि, ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध आचरण करने वाले को दंड, पतन के युग का आगमन, इतिहास की प्रक्रियाओं के रूप में प्रस्फुटित हो गया। इस्लामी अवधारणा के अनुसार इस्लामी समाज निरंतर प्रगतिशील है। यह प्रगति शांतिपूर्ण धर्म ग्रहण और हिंसापूर्ण संघर्ष दोनों साधनों द्वारा होती है। इस्लामी इतिहास चेतना का उदय 8वीं सदी के आरंभ में हुआ। इसे इस्लामी जगत में बौद्धिक पुनर्जागरण का युग माना जाता है। ईरान में अब्बासी वंश के उत्थान ने ऐतिहासिक चेतना को एक नवीन शक्ति प्रदान की। इस्लाम के प्रचार की घोषणा से प्रभावित होकर अनेक धर्मावलंबियों ने यूरोप, अफ्रीका तथा मध्य एशिया में प्रवेश किया। इन क्षेत्रों के ज्ञान ने अनेक इतिहास क्षितिज को विकसित करने में विशेष योगदान दिया। इस्लामी साम्राज्य का चतुर्दिक विस्तार तथा मक्का की तीर्थयात्रा को सार्वभौमिक स्वरूप प्रदान कर इस्लामी इतिहासकारों ने सर्वप्रथम विश्व भ्रातृत्ववाद तथा विश्व इतिहास की कल्पना की थी। पृष्ठ संख्या 62। इस्लामी इतिहास की अवधारणा को एक नवीन दिशा प्रदान करने का श्रेय इस्लामी जगत के ख्याति लब्ध इतिहासकार इब्न खलदून को है। गातिये ने उनके युग को इतिहास का सहारा कहा है। ऐसे समय में इतिहास चिंतन को एक नया स्वरूप प्रदान करके इब्न खलदून ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तयनबी ने उचित ही कहा है कि इब्न खलदून का इतिहास दर्शन उच्च कोटि का है। अभी तक किसी भी देश तथा किसी ने इस प्रकार की कल्पना तक नहीं की थी। जॉर्ज सार्टन की दृष्टि में इब्न खलदून न केवल मध्ययुगीन अपितु सार्वकालिक इतिहास सिद्धांत के महान प्रतिपादक तथा मानवीय अनुभव के महान दार्शनिक थे। वे ऐतिहासिक तथ्यों तथा उनके पारस्परिक संबंधों की विवेचना करने वाले प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं। उन्होंने सर्वप्रथम इतिहास की एक विस्तृत तथा समाजशास्त्रीय परिभाषा प्रस्तुत की। उनके अनुसार इतिहास मानव समाज, विश्व संस्कृति, सामाजिक परिवर्तनों, संघर्ष, क्रांति तथा विद्रोह के परिणाम स्वरूप राष्ट्रों के उत्थान और पतन का वृत्तांत है। इब्न खलदून ने न केवल इतिहास को वैज्ञानिकता प्रदान की, बल्कि उसके संबंध में कुछ मौलिक सिद्धांतों को भी प्रतिपादित किया। एक सामाजिक कार्यकलाप प्राकृतिक नियमों की तरह अटल न होते हुए भी इतने स्थायी हैं कि उनके फलस्वरूप सामाजिक घटनाओं में क्रम, गति और स्वर होते हैं। 2. इन नियमों की प्रक्रिया और प्रभाव जन समूहों में व्यक्त होते हैं। 3. इन नियमों के आधार पर तथ्यों का संकलन और गवेषणा की जा सकती है। 4. एक समान समाजों में एक ही श्रेणी के नियम कार्यशील रहते हैं। 5. समाज स्थावर नहीं होते, उनके भीतर विकास, परिवर्तन और गति होती है। जातियों के विकास पर भोजन, जलवायु तथा देश आदि के वातावरण संबंधी तथ्यों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। सामाजिक प्रक्रिया में अनुकरण की प्रवृत्ति का विशेष महत्व होता है। इब्न खल्दून का सबसे बड़ा योगदान इतिहास विज्ञान की विश्लेषणात्मक व्याख्या है। इसे उन्होंने संस्कृति का विज्ञान कहा है। इतिहास घटनाओं मात्र का अध्ययन है। इतिहासकार का कार्य वास्तविक घटना के कारणों का ज्ञान प्राप्त करना है। इब्न खल्दून के अनुसार समाज शरीर की तरह विकसित, प्रौढ़ तथा क्षीण होकर अपना जीवन काल व्यतीत करता है। जीवित प्राणियों की तरह समाज तथा राज्य का उत्थान तथा पतन होता है। सुधार के द्वारा नियति के निर्णय को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, किंतु अंत में पतन की गति का कार्यान्वयन होना अपरिहार्य है। इस प्रकार इतिहास विभिन्न समाजों का जीवन विज्ञान है। इसका कार्य मृत समाजों का वर्गीकरण, विश्लेषण और परीक्षण, उनके शारीरिक विधान के निर्माण और बुद्धि की प्रक्रिया का अन्वेषण और अनुसंधान तथा विकास की प्रवृत्तियों और नियमों का निर्धारण है। समाज की शारीरिक व्याख्या तथा इतिहास का जीव वैज्ञानिक विश्लेषण उन्हें स्पेंगलर और स्पेंसर के समकक्ष लाता है। इब्न खल्दून ने राज्य तथा समाज की व्याख्या की है। पहली पीढ़ी में शासक वर्ग विजित जातियों के आचार विचार को ग्रहण करते हैं। यह नागरिकता, स्थायित्व तथा संस्करण का युग होता है। तीसरी पीढ़ी में शासक वर्ग विलासिता का जीवन व्यतीत करता है। शासक के इच्छाएं तथा भोग विलास की प्रवृत्ति पतन का कारण बन जाती है। चौथी पीढ़ी निष्क्रिय तथा उदासीन हो जाती है। पांचवे में वह नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। सामाजिक तथा आर्थिक व्याख्या में इब्न खल्दून की मौलिकता स्पष्ट दिखाई देती है। विलासिता के बढ़ने से व्यय बढ़ता है, परिणाम स्वरूप करों में वृद्धि होती है, शोषण की संभावना बढ़ती है, यहीं से पतन का श्री गणेश होता है। उनके अनुसार जलवायु तथा भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव समाज पर पड़ता है। आर्थिक सिद्धांत के विषय में इब्न खल्दून का मत है कि संपत्ति का उद्गम व्यापार नहीं बल्कि उत्पादन होता है। किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन में निहित श्रम पर निर्भर करता है। आर्थिक तत्वों का राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। वे दास प्रथा के प्रबल विरोधी थे। इब्न खल्दून इस्लामी जगत के निराले विचारक माने जाते हैं। समाज की सामाजिकता उनके नवीन विचार की आधारशिला थी। उनके विचार की मौलिकता नितांत प्रशंसनीय है। वे पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने विश्व इतिहास की कल्पना की थी। वॉन क्रेमर ने उचित ही कहा है कि संस्कृति के इतिहासकारों में वे महान थे। समाजशास्त्रियों की दृष्टि में वे अपने युग के अरस्तु थे। इब्न खल्दून के बाद इस्लामी जगत इतिहास विचारकों से सर्वथा शून्य दिखाई देता है। ईसाई अवधारणा। इतिहास की ईसाई अवधारणा का स्वरूप धार्मिक रहा है। इसमें पूर्व की सभी परंपराओं का समन्वय तथा रोमन साम्राज्य एवं प्रवृत्तियों का समावेश हुआ। ईसा मसीह ने इस धार्मिक चेतना को सार्वभौमिक स्वरूप प्रदान किया। अधिकांश ईसाई इतिहास विचारकों की दृष्टि में संपूर्ण जगत ईश्वर की लीला है। इतिहास एक नाटक है। प्रथम अंक में आदम का स्वर्ग से पतन, पाप का प्रारंभ तथा ईश्वर से संबंध विच्छेद है, पृष्ठ संख्या 64। द्वितीय अंक में जीसस क्राइस्ट का अवतार, अनुयायियों का एकत्रीकरण, क्रॉस पर उनके मृत्यु तथा स्वर्ग के लिए प्रस्थान है। तीसरे अंक में चर्च की स्थापना तथा ईसाई धर्म का प्रचार है। चतुर्थ अंक में न्याय के दिन क्राइस्ट का पुनरागमन तथा ईसाई राज्य की स्थापना होता है। अतीतकालिक इतिहास का उद्देश्य ईसाई धर्म की स्थापना तथा वर्तमान एवं भावी इतिहास का उद्देश्य संपूर्ण विश्व में ईसाई धर्म का प्रचार एवं प्रसार है। ईश्वर इतिहास में प्रधान है। सामाजिक एकता के रूप में मानव कल्याण उनका प्रमुख उद्देश्य है। मानवीय कार्य अपने आप में पूर्ण नहीं है, यह ईश्वरीय इच्छा को प्रतिबिंबित करता है। इसे इतिहासकारों ने ऐतिहासिक चेतना के रूप में ग्रहण किया। सेंट अगस्टाइन ईसाई जगत के महान विचारक, दार्शनिक एवं साहित्यकार थे। उन्होंने मनुष्य की स्वतंत्रता तथा नैतिक दायित्व को प्रधान माना है। ईश्वर की आज्ञा का पालन ही मनुष्य का पुनीत कर्तव्य है। सेंट अगस्टाइन ने देवनगर तथा पापनगर के विरोधाभास का प्रतिपादन करते हुए इतिहास की व्याख्या की है। ईश्वर के आज्ञाकारी देव और मनुष्य दिव्य नगर के निवासी माने जाते हैं। उनका विरोध करने वाले पापनगर के निवासी हो गए। जब देवनगर में परिवर्तन हो रहे थे तो पापनगर में भी साम्राज्यों का उत्थान तथा पतन हुआ। रोम का उत्थान ईश्वरीय कृपा का प्रतीक था, परंतु पाप, अत्याचार, अन्याय, अनैतिकता के कारण उसका पतन हो गया। इस प्रकार ईश्वर इतिहास का मुख्य अभिनेता है। उसकी कृपा से सृष्टि की सारी घटनाएं होती हैं। न्याय, सौंदर्य तथा सत्य सभी उसी की लीला है। सत्य पाप के संघर्ष के कारण साम्राज्यों का उत्थान तथा पतन और संस्कृतियों का उद्भव एवं विनाश होता है। बोसुए की ऐतिहासिक कृतियों में ईसाई इतिहास दर्शन का चरमोत्कर्ष तथा अंत परिलक्षित होता है। उनके अनुसार विश्व का संपूर्ण कार्यकलाप तथा इतिहास की गतिविधि ईश्वरीय इच्छा पर निर्भर है। क्राइस्ट का आगमन ईश्वर की महान और विशाल योजना का परिचायक है। यह योजना मनुष्य को पाप से हटाकर सत्य तथा अमरत्व की ओर ले जाती है। उनकी दृष्टि में चर्च इतिहास का प्रधान केंद्र है। बाह्य विरोध तथा आंतरिक असंतोष भी इसका अंत करने में असफल रहा है, परंतु प्रोफेसर जे बी ब्यूरी ने इस तर्क की आलोचना की है। उनके अनुसार बोसुए कि यह अवधारणा नितांत असत्य और तथ्यहीन है कि मानव जाति की रचना केवल चर्च के निमित्त हुई है। कॉल्विन तथा मार्टिन लूथर ने मनुष्य की स्वतंत्रता पर विशेष जोर दिया। पृष्ठ संख्या 65। उन्होंने रूढ़िवादी ईसाई दृष्टिकोण तथा पाप के क्षमादान के अधिकार को चुनौती दी। इन सुधारवादी नेताओं का उद्देश्य मानव समाज को स्वतंत्र चिंतन का अधिकार प्रदान करना था। वैयक्तिक स्वतंत्रता के कारण विज्ञान तथा राजकीय प्रशासन का उदय हुआ। परिणाम स्वरूप वैयक्तिक स्वतंत्रता आधुनिक इतिहास में मौलिक अधिकार बन गया। इस प्रकार ईसाई इतिहास अवधारणा के अनुसार इतिहास विश्वव्यापी देव प्रधान चमत्कार पूर्ण तथा युग परक है। इतिहास में ईश्वर की एक योजना क्रियाशील है जिसका संदेश ईसा के आगमन द्वारा प्राप्त हुआ। इतिहास का अतीत न केवल आलोकित हुआ बल्कि इसका भविष्य भी उद्भासित हो उठा। इतिहास की घटनाएं प्रवृत्ति मूलक सिद्ध होती हैं। व्यक्ति तथा व्यक्तिगत इच्छा की इतिहास में कोई भूमिका नहीं होती है, वह ईश्वरीय इच्छा का निमित्त मात्र होती है। दिव्य प्रेरणा और आयोजन से और योजना से नियंत्रित इतिहास की प्रक्रिया मनुष्य को अपने में लपेटे हुए अनंत सुख और प्रमाद और प्रसाद की ओर ले जा रही है। दार्शनिकता के साथ ही पक्षपात की भावना का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ईसाई इतिहास में आलोचना पद्धति का विकास संभव न हो सका, क्योंकि ईसाई इतिहास में विश्वास ही प्रधान है। यह इतिहास अनेक प्रकार से त्रुटिपूर्ण है। काल का ज्ञान इतिहासकारों में नहीं था। इतिहास की विशेषता न्याय, सौंदर्य तथा सत्य है। समाज तथा राज्य का उत्थान और पतन सत्य तथा परम के बीच संघर्ष के परिणाम स्वरूप होता है।